आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में भारत के नीरज चोपड़ा ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरी बार कांसे का तमगा हासिल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से मालदीव का 3 दिन का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने उबूरी सरकार के सरबराह की हैसियत से हलफ लिया है। इंतखाबी कमीशन की टीम ने जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के बारे में श्रीनगर में मुतालिका फरीकों के साथ तबादला ख्याल किया। एक हफ्ता तवील हर घर तिरंगा मुहिम आज से पूरे मुल्क में शुरू हो रही है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड सरमायाकारों का मुनफरिद बेस 10 करोड़ से तजावुज कर गया है। अब खबरें तफसील से। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कल रात मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में भारत के सरकर्दा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर नेजा फेंककर चांदी का तमगा जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 90.57 मीटर का पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 92.97 मीटर नेजा फेंककर सोने का तमगा हासिल किया। नीरज चोपड़ा का चांदी का तमगा पेरिस ओलंपिक्स में भारत का 5वां तमगा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
नीरज चोपड़ा ने कल रात पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए चांदी का पहला तमगा हासिल करके तारीख रकम की और वो आजादी के बाद एथलेटिक्स में 2 तमगे जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के बाद ओलंपिक्स में लगातार तमगे जीतने वाले दूसरे भारतीय मर्द खिलाड़ी और मजमूई तौर पर तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। कल फाइनल में नेजा फेंकने के सख्त मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने अपनी शानदार कोशिश में इस सीजन का सबसे बेहतरीन थ्रो किया। इस तरह नीरज ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का पहला तमगा दिलाकर मुल्क का नाम रोशन किया। पेरिस से शौर्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने पर नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को उन पर फख्र है और उनके इस कारनामे से आने वाली नस्लों को तरगीब मिलेगी। नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीरज ने अपनी शानदार सलाहियत का मुजाहिरा किया है और ओलंपिक्स में एक और कामयाबी के साथ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इधर वजीर दाखिला अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने तिरंगे की शान में इजाफा किया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल में पहली मरतबा लगातार ओलंपिक में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल और गोलकीपर पीआर श्रीजेश की जानिब से शानदार तरीके से गोल बचाए जाने की बदौलत स्पेन को 1-2 गोल से हराकर कांसे का तमगा जीता। म्यूनिख में 1972 के खेलों के बाद भारत ने लगातार 2 ओलंपिक्स में तमगा जीता है। इससे पहले 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कांसे का तमगा जीता था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि टीम की कारकर्दगी काबिले तहसीन है और टीम का तसलसल, उसकी हुनरमंदी और भरपूर मुकाबला करने का उसका जज्बा नौजवानों को तहरीक देता रहेगा। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी तारीखी कामयाबी पर भारतीय हॉकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि हॉकी खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उन्हें स्पेन के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को टीम का सरपंच करार दिया। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कांसे का तमगा जीतने पर मर्दों की भारतीय हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 15 लाख रुपए और मुआविन अमले के हर मेंबर को 7.5 लाख रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। हरमनप्रीत सिंह की क्यादत में हॉकी टीम ने स्पेन को 1-2 गोल से हराकर 52 बरस के बाद ओलंपिक्स में लगातार दूसरी मरतबा कांसे का तमगा जीता है। भारत के गोलकीपर पीआर श्रीजेश के लिए यह आखिरी मैच रहा। 36 साल श्रीजेश ने कांस्य के तमगे के लिए इस मैच से पहले ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। आज पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती, गोल्फ और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ी अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। कुश्ती में भारत के अमन सहरावत मर्दों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 9:45 बजे कांस्य के तमगे के लिए मुकाबला करेंगे। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर तीसरे राउंड में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। एथलेटिक्स में भारत की मर्द खवातीन की 4x400 मीटर रिले टीमें भी आज दोपहर अपने खेल का मुजाहिरा करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से मालदीव के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी साझेदारी को मुस्तहकम बनाना और बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसत देने के नए मौके तलाश करना है। इससे कबल मालदीव के सदर डॉ मोहम्मद मुइज्जू इस साल जून में नई काबीना और वजारती कौंसिल की हलफबरदारी की तकरीब में भारत के दौरे पर आए थे। मालदीव बहरी खत्ते में भारत का एक अहम हमसाया मुल्क है और बहर हिंद में उसे एक कलीदी मकाम हासिल है। उम्मीद है कि डॉ जयशंकर के दौरे में साझेदारी को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और इश्तराक के नए रास्ते तलाश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में नई जिम्मेदारी संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि बांग्लादेश में हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे ताकि वहां हिंदुओं और तमाम दीगर अकलीती तबकों की सलामती और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अमन सलामती और तरक्की के लिए दोनों मुल्कों के अवाम की मुश्तरका उमंगों की तकमील की खातिर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के तय पुरअज़्म है। नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की उबूरी सरकार के सरबराह की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कल शाम ढाका में बोंग भवन में उन्हें हलफ दिलाया। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में चुनाव कमीशन की टीम मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर गई हुई है। इसमें इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉ एसएस संधू भी शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन के अहदेदार आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ मीटिंग करेंगे और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। चुनाव कमीशन की टीम ने कल मुख्तलिफ फरीकों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया जिसमें कौमी और जम्मू कश्मीर की तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल थे। इसका मकसद इंतखाबी अमल में उनकी सरगर्म शमूलियत को फरोग देने की खातिर उनकी राय मालूम करना और उनके ख्यालात को समझना है। इससे कबल इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहमियत के हामिल इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादले ख्याल के लिए जिला चुनाव अफसरों और पुलिस सुप्रीटेंडेंट साहिबान के साथ चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बढ़ावा देने के लिए पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा मुहिम आज से 15 अगस्त तक चलाई जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सकाफत और सयाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर इसे अपलोड करें। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया गया था। जनाब शेखावत ने कहा कि पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। जनाब शेखावत ने कहा कि 13 अगस्त को अरकान पार्लियामेंट और वजीरों के साथ तिरंगा बाइक रैली होगी।
देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए। इस बार भी 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है।
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत दुनिया में जूते चप्पल बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। नई दिल्ली में भारत के 8वें बैन अल-अक़वामी फुटवेयर मेले के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत इस शोबे में नंबर एक मुल्क बने। जनाब पीयूष गोयल ने उम्मीद जाहिर की कि साल 2030 तक भारत का फुटवेयर शोबा 50 अरब डॉलर की बरामदात तक पहुंच जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस शोबे की तरक्की के तई पाबंद अहद है और हर तरह की तजवीजों और नजरियात पर गौर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने मैन्युफैक्चरर्स को यह सलाह दी कि वह मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आजाद तजारत के समझौते से फायदा उठाएं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड सरमायाकारों का मुनफरिद बेस पहली बार 10 करोड़ से तजावज कर गया है। रजिस्टर्ड सरमायाकारों की तादाद 4 करोड़ तक पहुंचने में 25 साल लगे थे और ऐसा मार्च 2021 में हुआ था। इसके बाद इसमें तेजी आई और हर 6-7 महीने में 1 करोड़ का इजाफा होता गया। पिछली मरतबा 1 करोड़ रजिस्टर्ड सरमायाकार सिर्फ 5 महीने की मुद्दत में इसमें शामिल हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अखबारी बयान में यह जानकारी दी है। इस अरसे के दौरान रोजाना औसतन 50,000 से लेकर 78,000 तक नए सरमायाकारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। गुज़श्ता 5 साल में सरमायाकारों की तादाद में 3 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है और ऐसा डिजिटाइजेशन में तेजी के साथ तरक्की, सरमायाकारों की बढ़ती हुई बेदारी, माली शमूलियत और पायदार मार्केट की बदौलत हुआ है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के कई हिस्सों में अगले 7 दिन के दौरान दूर दूर तक शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
मौसमियात के महकमे के मुताबिक शुमाल मशरिक और मगरबी हिमालयी खित्ते में अगले 7 दिन में दूर दूर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का इम्कान है। मुल्क के मशरकी हिस्सों में भी अगले 3-4 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा मुल्क के जनूबी हिस्सों में अगले 7 दिन के दौरान बारिश का जोर कम रहने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, सिक्किम, झारखंड, बिहार, ओडिशा, कोंकण, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इस महीने की 14 तारीख तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
मिस्र, कतर और अमरीका के रहनुमाओं ने इसराइल और हमास पर जोर दिया है कि जंगबंदी मुआहदे को जल्द कतई शक्ल दें। कल रात एक मुश्तरक बयान में तीनों ममालिक ने इसराइल और हमास पर जोर दिया है कि वो दोहा या काहिरा में 15 अगस्त को दोबारा फौरी बातचीत का आगाज करें ताकि मुआहदे से मुतालिक सभी बकिया कमियों को पुर किया जा सके और मजीद बगैर किसी ताखीर के इसका निफाज हो सके। ये थी खबरें और अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की 6 सुर्खी है, सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल को जायजे के लिए जेपीसी के पास भेजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी इस खबर को 6 सुर्खी बनाया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड के वजीर आजम से मुलाकात। अखबार रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, आरबीआई ने फिर रेपो रेट में नहीं की तब्दीली, लगातार 9वीं बार 6.5% पर बरकरार। अखबार इंकलाब ने इंतखाबी कमीशन के जम्मू कश्मीर के दौरे से मुतालिक खबर को कौमी सफे पर जगह दी है। अखबारात ने बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह की हैसियत से नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मआशियात मोहम्मद यूनुस के हलफ लेने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में भारत के नीरज चोपड़ा ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरी बार कांस्य का तमगा हासिल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से मालदीव का 3 दिन का दौरा करेंगे। بنگلہ دیش میں نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے عبوری سرکار کے سربراہ کی حیثیت سے حلف لیا ہے، اور انتخابی کمیشن کی ٹیم نے جموں کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے بارے میں سری نگر میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔